So I've been asked to speak today on Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 1, text number 42.
तो आज मुझको कहा गया है श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के पहले अध्याय के 42वें श्लोक पे बोलने के लिए.
But as there is no purport by Srila Prabhupada, we will read through many verses until we come to the verse that has a purport, and then we'll speak on that verse, which is text 56.
तो क्योंकि प्रभुपाद जी ने इन श्लोकों पे कोई तात्पर्य नहीं दिया है, इसलिए हम कई श्लोक पढ़ेंगे जब तक कि हमको श्लोक नंबर 56 पे ना आ जाए, इस पे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है.
So then we're reading text 42 through 46.
तो हम 42 से लेकर 46 तक पढ़ेंगे.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. चतुस्त्वत्वारवनापायिनि लेभे पुत्रं दृढव्रतम् यज्यन्तम् अश्वशेरसं बृघर्वंशं निबोधमे. Chiti, wife of the sage Atharva, gave birth to a son named Ashvashera. By accepting a vow, a great vow called Dadyansha, now you may hear about me, you may hear from me about the descendants of the sage Bhrigu. Purport, the wife of Atharva, known as Chiti, is also known as Shanti. She was the eighth daughter of Cardamom Muni.
Atharva Muni ki patni Chiti ne Ashvashera namak putra ko janm diya, jo vratadari hone ke karan Dadyansha kehlaya. अब तुम मुझसे भृगु मुनि के वंश के विषय में सुनो. तात्पर्य, अथर्वा की पत्नी चित्ती का अन्य नाम शांति भी है. वह कर्दम मुनि की 8वीं कन्या थी.
भृगु ख्याचम महाभागा पत्न पुत्रम अजी जनत दातरम शिवदत्तारं श्रीयम श भगवत परम. The sage Bhrigu was highly fortunate, and his wife, known as Khyati, he begot two sons named Datta and Vidhata, and one daughter named Shri, who was very much devoted to the Supreme Personality of Godhead.
Bhrigu Muni atyadhik bhagyashali the. Unhein apni patni Khyati se do putra, Datta tatha Vidhata, aur ek putra Shri prapt hui. वह श्री भगवान के प्रति अत्यधिक परायण थी.
आयतिंग नियतिंग चायवा सुते मेरुस्तयोरदत ताभ्यंग तयोरबावंतं मित्कंदा प्रणेवचा. The sage Meru had two daughters named Ayati and Niyati, whom he gave in charity to Datta and Vidhata. Ayati and Niyati gave birth to two sons, Mitkanda and Prana.
मेरु ऋषि के दो पुत्रियां थीं, जिनके नाम आयति तथा नियति थे, जिन्हें उन्होंने धाता तथा विधाता को दान दे दिया. आयति तथा नियति से मृकंड तथा प्राण नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए.
मृकंदेय मृकंदस्य प्राणद्वेदशिरा मुनि कविश्च भार्गवो यस्य भगवान् उशनासुतः. From Mikanda, Markandeya Muni was born, and from Prana, the sage Vedashirya, whose son was Ushana Shukracharya, also known as Kavi. Thus, Kavi also belonged to the descendants of the Bhrigu dynasty.
Mrikanda se Markandeya Muni aur Prana se Vedashira Rishi utpanna hue. Vedashira ka putra Ushna athwa Shukracharya tha, jo Kavi bhi kehlata hai. इस प्रकार कवि भी भृगुवंशी था.
चैते मुनियच्छतार लोकं सर्गे अभावयन् एष कर्दम दाहित्र संताना कहितस्तव श्रृण्वता श्वदानस्य सद्यपापहरापर प्रसूतम मनरिंग दक्ष उपयेमे यजात्मज। My dear Vidura, the population of the universe was thus increased by the descendants of these sages and the daughters of Kardama. Anyone who hears the descriptions of this dynasty with faith will be relieved from all sinful reactions. Another of Manu's daughters, known as Prasuti, married the son of Brahma named Daksha.
Hey Vidur, इस प्रकार इन मुनियों तथा कर्दम की पुत्रियों की संतानों से विश्व की जनसंख्या बढ़ी। जो कोई श्रद्धा पूर्वक इस वंश के आख्यान को सुनता है वह समस्त पाप बंधनों से छूट जाता है। मनु की अन्य कन्याओं में से प्रसूति ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष से विवाह किया।
तस्यं ससर्ज दुहृत्र षोडशा मललोचना त्रयोदशा दद्धर्मया तथाएकं अग्नये विभु। Daksha begot 16 very beautiful daughters with lotus-like eyes in his wife Prasuti. Of these 16 daughters, 13 were given in marriage to Dharma, and one daughter was given to Agni.
Daksha ne apni patni Prasuti se 16 kamal nayini sundari kanyaye utpann ki. In 16 kanyaon mein se 13 dharma ko aur ek Agni ko patni roop mein pradan ki gayi.
Pitribya ekam yukte bhyo vavaya ekam vavachchide shada maitri daya shantis tushti pushti kriyonati budhir medna tatiksha hrir murtir damarsha patnaya shadha sutta shubang maitri prasadam abhyang daya shanti sukam mudang pushti mayang pushtir asayuta yogam kriyonatir darpam atam budhir asuyata Made us mitim tatikshatu, chimam hri prashrayam sutam, murti sarva gunatpatir, nara narayanam rishi. Of the remaining two daughters, or rather one of the remaining two daughters was given in charity to Pitri Loka, where she resides very amicably, and the other was given to Lord Shiva, who is the deliverer of sinful persons from material entanglement. The names of the 13 daughters of Daksha who were given to Dharma are Shraddha Maitri Daya Shanti Tushti Pushti Kriya Unati Buddhi Medha Tipikshari and Murti. These 13 daughters produced the following sons. Shraddha gave birth to Shubha. Maitri produced Prashad. Daya gave birth to Abhay. Shanti gave birth to Shuka. Tushti gave birth to Muda. Pushti gave birth to Smyaya. Kriya gave birth to Yoga. Unati gave birth to Darpa, Buddhi gave birth to Artha, Medha gave birth to Smriti, Tatiksha gave birth to Chema, and Hri gave birth to Prashraya Murti, a reservoir of all respectable qualities, gave birth to Sri Naranarayan, the Supreme Personality of Godhead.
Shesh do kanyaon mein se ek Pitrlok ko daan de di gayi, jahan vah prem purvak reh rahi hai. Aur dusri kanya bhavbandhan se samast paapiyon ke udharak Shivji ko di gayi. दक्ष ने धर्म को जिन 13 कन्याओं को दिया उनके नाम थे श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रिया उन्नति बुद्धि मेधा तितिक्षा हरि तथा मूर्ति। इन 13 ने पुत्रों का जन्म दिया जो इस प्रकार हैं: श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मुद, पुष्टि ने स्मय, क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने श्रेम तथा हरि ने प्रश्रय को जन्म दिया। समस्त गुणों की खान मूर्ति ने नर नारायण को जन्म दिया जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं।
Yajorjan manjajo vishvam abhyanandat sanirvritam manangshi kukubo kukubho vata pasedu sarito dravaya. On the occasion of the appearance of Naranarayan, the entire world was full of joy. Everyone's mind became tranquil, and thus in all directions the air, the rivers, and the mountains became pleasant.
नर नारायण के जन्म के अवसर पर समस्त विश्व आनंदित था, प्रत्येक का मन शांत था और इस प्रकार समस्त दिशाओं में वायु नदियां तथा पर्वत मनोहर लगने लगे।
दिव्य व्याद्यंतर्यानी हेतु चुमुस्ता कुसुम वृष्टया मुनयस्तुष्टवस्तुष्टा जागु गंधर्व किन्नरा नृत्यन्ति स्म स्त्रियो देव अचित परम मंगलम देवा ब्रह्मादि सर्वे उपतस्तुर अभिष्टवाये। In the heavenly planet, bands began to play, and they showered flowers from the sky. The pacified sages chanted Vedic prayers. The denizens of heaven, known as the Gandharvas and Kinnaras, sang. The beautiful damsels of the heavenly planets danced, and in this way, the time of the appearance of Naranarayan, all signs of good fortune were visible. Just at that time, great demigods like Brahma also offered their respectful prayers.
स्वर्ग लोक में बाजे बजने लगे और आकाश से पुष्प बरसने लगे। प्रसन्न मुनि वैदिक स्तुतियों का उच्चारण करने लगे। गंधर्व तथा किन्नर लोक के वासी गाने लगे और स्वर्ग की अप्सराएं नाचने लगीं। इस प्रकार नर नारायण के जन्म के समय सभी मंगल सूचक चिन्ह दिखाई पड़ने लगे। उसी समय ब्रह्मादि महान देवों ने भी सादर स्तुतियां अर्पित करी।
देव उच्छु यो मायया वरचितम निजयात्मनादि मनीदं के रूप भेदं इव तत् प्रतिचक्षणाय इत्येन धर्म सरणे ऋषि मूर्तनार्य प्रदुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै। The demigod said, let us offer our respectful obeisances unto the transcendental personality of Godhead, who created as his external energy this cosmic manifestation, which is situated in him as the air and clouds are situated in space, and who has now appeared in the form of Nara, Narayan Rishi, in the house of Dharma. Purport. The universal form of the Lord is the cosmic manifestation, which is an exhibition of the external energy of the Supreme Personality of Godhead. In space, there are innumerable varieties of planets and also the air. And in the air, there are variously colored clouds, and sometimes we see airplanes running from one place to another. Thus, the entire cosmic manifestation is full of variety, but actually, that variety is a manifestation of the external energy of the Supreme Lord. And that energy is situated in him. Now the Lord himself, after manifesting his energy, appeared within the creation of his energy, which is simultaneously one with and different from himself, and therefore the demigods offer their respects to the Supreme Personality of Godhead, who manifests himself in such varieties. There are some philosophers called non-dualists, who, because of their impersonal conception, think that varieties are false. In this verse, it is specifically stated, Yo Mayaya Varachitam. This indicates that the varieties are a manifestation of the energy of the Supreme Personality of Godhead. Thus, because the energy is non-different from the Godhead, varieties are also factual. The material varieties may be temporary, but they are not false. They are a reflection of the spiritual varieties. Here the word pratichakshanaya, there are varieties, announces the glories of the Supreme Personality of Godhead, who appeared as Naranarayan Rishi, and who is the origin of all varieties of material nature.
Devtaon ne kaha, हम उस दिव्य रूप भगवान को नमस्कार करते हैं जिन्होंने इस दृश्य जगत की सृष्टि अपनी बहिरंगा शक्ति के रूप में की है, जो उनमें उसी प्रकार स्थित है जिस प्रकार वायु तथा बादल आकाश में रहते हैं, और जो अब धर्म के घर में नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए हैं। तात्पर्य, भगवान का विराट रूप यह दृश्य जगत है जो श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्रदर्शन है। आकाश में असंख्य विविध प्रकार के लोक हैं और वायु भी है। वायु में विविध रंगी बादल रहते हैं और कभी कभी हम एक स्थान से दूसरे स्थान को उड़ते विमान भी देखते हैं। इस प्रकार यह दृश्य जगत विविधता से पूर्ण है, किंतु वास्तव में यह विविधता परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति का प्रदर्शन है और यह शक्ति उन्हीं में स्थित है। अपनी शक्ति को प्रकट करने के बाद अब भगवान स्वयं अपनी ही शक्ति की सृष्टि के अंतर्गत प्रकट हुए हैं, जो एक ही समय उनसे अभिन्न है तथा भिन्न भी है। अतः देवताओं ने अनेक रूपों में प्रकट होने वाले श्री भगवान को नमस्कार किया। कुछ अद्वैतवादी दार्शनिक अपने निर्गुण चिंतन के कारण इन रूपों को मिथ्या मानते हैं। इस श्लोक में विशेष रूप से कहा गया है, यो माया विरचितम। यह सूचित करता है कि ये रूप श्री भगवान की शक्ति के प्रकटीकरण हैं। इस प्रकार शक्ति के भगवान से अभिन्न होने के कारण ये रूप वास्तविक हैं। भौतिक रूप क्षणिक भले हों, किंतु मिथ्या नहीं है, वे आत्म रूपों के प्रतिबिंब हैं। यहाँ पर प्रयुक्त प्रतिचक्षणाय शब्द, इसका अर्थ है वे रूप हैं, श्री भगवान का यश घोषित करता है, जो नर नारायण के रूप में प्रकट हुए हैं और जो भौतिक प्रकृति के समस्त रूपों के मूल हैं।
वंदेहं श्री गुरु श्री जटापल कमल श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगमरागमतं वितांतं सजीवं सदैतं सवदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपदं सहगना ललित शिवशकांवितांश्च नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चाद्यदेशतारिणे। So once again, Prabhupada criticizes Mayavadi philosophy.
तो फिर से हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी मायावादी दार्शनिक को डांटते हैं।
Actually, Mayavadi philosophy deserves to be criticized.
वास्तविक रूप से मायावादी दर्शन का भर्त्सना की ही जानी चाहिए।
The Vaishnavas take great pleasure in kicking Mayavadi philosophy in the face with boot.
जो वैष्णवगण हैं, वो मायावादी दर्शन को के ऊपर लातने में बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं।
Because Mayavadi philosophy denies the personality of Godhead.
क्योंकि मायावादी दर्शन भगवान के रूप को नकारता है।
The Mayavadis are such cheaters and rascals.
मायावादी लोग इतने धोखेबाज हैं और धूर्त हैं।
They say, I believe in God.
वो कहते हैं कि मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ।
I am God.
मैं खुद ही भगवान हूँ।
Just see what cheaters and rascals they are.
तो देखिए वो कितने बड़े धूर्त और धोखेबाज हैं।
They claim to be religious. They claim to be religious.
वो धार्मिक होने का ढोंग करते हैं,
But they are rascals number one.
लेकिन वो सबसे पहले दर्जे के धोखेबाज हैं।
And their philosophy is not very practical either.
और उनका दर्शन भी कोई बहुत व्यवहारिक नहीं है।
Everything is one, Prabhu.
सब कुछ एक है।
If it was time for the Janmashtami love feast.
तो एक बार जन्माष्टमी के पर्व के दिवस में प्रीति भोज का अवसर था।
And instead of having many many varieties of preparations on your leaf plate,
तो अपने पत्तल पे प्रसादम के पत्तले विभिन्न प्रकार के प्रसादम के व्यंजन होने के जगह,
all you had was a pile of bland, unspiced rice.
आप केवल एक सादा चावल रहे तो कैसे लगेगा?
Would you say, wow, what a wonderful feast?
तो क्या आप कहेंगे, ओह कितना सुंदर भोज दिया गया है?
No spice.
उसमें कोई मसाले नहीं होंगे।
No salt.
नमक भी नहीं होगा,
नो बटर,
मक्खन भी नहीं होगा,
नो चटनी,
चटनी भी नहीं मिलेगी,
नो पकौड़ा,
पकौड़े भी नहीं है,
नो गुलाब जामुन,
गुलाब जामुन भी नहीं है,
नो सब्जी,
सब्जी भी नहीं है,
नो रसगुल्ला,
रसगुल्ला भी नहीं है,
जस्ट सम ब्लैंड अनस्पाइस सॉल्टलेस राइस,
केवल सादा चावल जिसमें नमक भी नहीं है,
एंड दैट्स ऑल इट वाज,
बस केवल यही है,
एंड एवरी डे दैट्स ऑल यू गॉट फॉर प्रसादम,
और रोज रोज केवल यही मिले आपको प्रसाद के रूप में,
अ बिग पाइल ऑफ ब्लैंड बटरलेस टेस्टलेस सॉल्टलेस राइस,
स्वादहीन नमकहीन एक ढेर भर करके चावल,
एंड द मायावादी से दिस इज ग्रेट,
और मायावादी कहते हैं ये तो बहुत अच्छी चीज है,
टेस्टलेस वैरायटीलेस फ्लेवरलेस साइडलेस सैमलेस जस्ट ब्रह्मांड,
तो उस ब्रह्म की उपासना करते हैं जिसमें कोई विविधताएं नहीं है, जिसमें कोई स्वाद नहीं है, जिसमें कोई रूप नहीं है, गंध नहीं है,
मायावादी से ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या,
तो मायावादी कहते हैं ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है,
only brahman is truth,
केवल ब्रह्म ही सत्य है,
everything else is false,
बाकी सब कुछ झूठा है,
all varieties are false,
जितनी भी विविधताएं हम देखते हैं वो सब झूठी हैं,
but if that's true then how the mayavadi philosopher can even exist,
अगर ये सत्य है तो क्या मायावादी दार्शनिक कैसे कैसे उसका अस्तित्व हो सकता है,
if everything is brahman then how there can be a person named the mayavadi philosopher,
अगर सब कुछ ब्रह्म है तो मायावादी दार्शनिक नाम का एक व्यक्ति कैसे हो सकता है,
the very existence of the mayavadi philosopher refutes mayavadi philosophy,
तो मायावादी दार्शनिक का अस्तित्व होना ही मायावादी दर्शन का खंडन है,
but yet mayavadi philosophy is very popular,
लेकिन मायावादी दर्शन जो है वो बहुत प्रचलित है,
in mayavadi philosophy you get to be god,
क्योंकि मायावादी दर्शन को अपनाने से हम अपने आप को भगवान मान सकते हैं,
why did shankaracharya spread this mayavadi philosophy,
shankaracharya ji ne is mayavadi darshan ka prachar kyon kiya,
I mean it's really demoniac,
vastavik roop se ye bahut hi aasurik hai,
why did he spread it,
kyon unka prachar,
I'll tell you why,
main aapko batata hu kyon kiya,
after krishna left his planet 5000 years ago,
5000 saal pehle jab bhagwan shri krishna is dhara dham se chale gaye the apne dham ko,
the kali yuga came in,
kaliyug ka pradurbhav hua,
and Kali Yuga is a pretty bad age, you know, pretty bad, yeah,
to kaliyug pra sabse kharab yug hai,
it's a vicious age,
bahut hi ganda yug hai, bahut hi papmay yug hai,
demoniac,
asuri yug hai,
insane,
pagalpan ka yug hai,
horrible age actually Kali Yuga,
bahut hi ganda yug hai,
so the people of India they were killing cows,
तो भारतीय लोग जो थे वो गाय का वध कर रहे थे,
and they were using the Vedic scriptures to say it's okay,
और वो वेदों का उपयोग कर रहे थे इसको ठीक बताने के लिए,
as Shakespeare said devil cites scripture,
शेक्सपियर ऐसा कहते हैं कि जो असुर है वो शास्त्र को कोट करता है, शास्त्र का प्रमाण देता है,
the brahmin said just see in the Treta Yuga the brahmins were killing cows,
to brahman aisa kehte the ki Treta Yug mein brahman gayon ka vadh kiya karte the,
vedic sacrifice,
vedic yagyon mein,
so cow killing is vedic,
to gayon ka vadh karna jo hai wo vedic vedon ke anusar
pramanik hai, not the proper understanding of the cow sacrifices,
लेकिन ये ठीक गायों का वध इस प्रकार की जो उनके अवमानना है वो सही नहीं है,
इन द ट्रेटा युग द ब्राह्मण्स वर सो एक्सपर्ट इन चैंटिंग मंत्रस दे कुड टेक एन ओल्ड काउ पुट द काउ इनटू द सैक्रिफिशियल फायर व्हाइल चैंटिंग वैदिक मंत्रस एंड दैट काउ द सेम जीवा वुड कम आउट ऑफ द फायर विद अ यंग काफ बॉडी,
तो त्रेता युग में जो ब्राह्मण थे वो इतने शक्तिशाली थे कि वो जब मंत्र उच्चारण करते हुए एक पुरानी गाय का वृद्ध गाय का वध करते थे इस यज्ञ में, तो तुरंत ही वो जो जीवात्मा उस गाय के शरीर में थी वो एक नवजात बछड़े के रूप में उत्पन्न हो जाती थी,
सो दिस वॉज नॉट क्या किलिंग,
तो ये वस्तुतः गाय का वध नहीं था,
दिस वॉज
cow rejuvenation.
ये वस्तुतः गाय को एक नया शरीर देना था.
But in the Kali Yuga, they had no power to rejuvenate the cow.
कलयुग में लेकिन ऐसी शक्ति ब्राह्मणों में नहीं थी कि वो नया शरीर दे सकें.
They simply wanted to kill and eat.
वो केवल मार करके गाय को खा जाना चाहते थे.
And they said it's Vedic.
और वो उससे वेदों का सहारा लेके उसको प्रमाणिक मानते थे.
So Lord Krishna, being very kind upon the poor cows.
भगवान श्री कृष्ण गायों के ऊपर बहुत कृपा है उनकी इस कारण से.
He appeared as Lord Buddha.
भगवान बुद्ध के रूप में वो आए.
Why are you following the Vedas?
उन्होंने कहा कि आप वेदों को मानते ही क्यों हो.
He denied the Vedas.
और वेदों का उन्होंने खंडन कर दिया.
Because they were so much abusing them, he said, forget these Vedas.
तो उन्होंने क्योंकि वो वेदों का गलत उपयोग कर रहे थे इसलिए उन्होंने कहा कि तुम वेदों को भूल जाओ.
He said, you must practice ahimsa because if you cause suffering to those animals, that suffering will come back to you with a lot of karma.
तो उन्होंने समझाया कि आपको अहिंसा का अभ्यास करना चाहिए क्योंकि यदि आप इन असहाय पशुओं पे अत्याचार करेंगे तो वही हिंसा आपके ऊपर लौट के वापस आएगी.
He taught an atheistic system.
उन्होंने नास्तिकवाद को का प्रचलन किया.
Which denied the Vedas.
और वेदों का खंडन किया.
And when the emperor Ashok embraced Buddhism, then all of India became Buddhist.
और जब महाराज अशोक ने बौद्ध धर्म का अवलंबन किया तो उससे पूरा भारत प्राय बौद्ध धर्म के द्वारा प्रभावित हो गया.
The Vedas were rejected all over India.
वेदों का उसको संपूर्ण रूप से खंडित उनकी अवमानना होने लगी.
The Varnashram system was rejected all over India.
वर्णाश्रम धर्म को भी छोड़ दिया.
And then Krishna instructed Lord Shiva that now you come as a Brahmana, Shankaracharya.
तब भगवान कृष्ण ने शिवजी को उपदेश दिया आज्ञा दिया कि आप एक ब्राह्मण के रूप में आइए शंकराचार्य जी के रूप में.
And you present impersonal philosophy.
और आप निर्विशेषवादी दर्शन का प्रचार कीजिए.
As a means of re-establishing acceptance of the Vedas.
जिसके द्वारा वेदों को वापस से वेदों के हाँ वेदों को वापस से स्थापित किया जा सके.
So through expert word jugglery.
तो word jugglery.
Grammatical knowledge of Sanskrit. Juggling.
संस्कृत के
He twisted the Vedic statements to present an impersonal idea of God.
हाँ संस्कृत की वाक् चातुरी के द्वारा उन्होंने वेदों के अथॉरिटी को स्थापित किया.
The idea was to get the Vedas back into India.
तो उनका ये मुख्य उद्देश्य था कि वेदों को वापस से भारत में स्थापित किया जाए.
Although there was an incorrect understanding of Vedic wisdom, at least it got the Vedic knowledge, the Vedas were again accepted in India.
बावजूद इसके कि वेदों की सही रूप से समझावट नहीं थी उनकी लेकिन फिर भी वेदों के अधिकार को उन्होंने स्थापित कर दिया.
And then a whole series of Vaishnava acharyas came.
और उसके बाद
आचार्य ब्रह्मानुजाचार्य विष्णु स्वामी निंबार्का एंड फाइनली चैतन्य महाप्रभु.
उसके बाद अनेक अनेक वैष्णव आचार्य आए यथा मध्वाचार्य जी रामानुजाचार्य जी निंबार्क स्वामी विष्णु स्वामी और चैतन्य महाप्रभु.
To establish the proper understanding of Vedic wisdom.
ताकि वेदों की जो ठीक समझावट है उसको लोगों में प्रचार किया जा सके.
That is Chaitanya's movement.
ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है.
अचिंत
भेद भेद तत्व.
And then Srila Prabhupada took that Chaitanya's movement on the order of his Guru Maharaj Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. He took that Chaitanya movement all over the whole world.
श्री प्रभुपाद जी ने उसी चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को अपने गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की आज्ञा से पूरे विश्व में लेके ले गए वो.
So Mayavadi, just as Buddha tricked people into giving up cow killing,
भगवान बुद्ध ने लोगों को छल से गोवध से बचाया.
Shankaracharya tricked people into accepting the Vedas.
शंकराचार्य जी ने छल के द्वारा लोगों को वेदों के अधिकार को मानना सिखाया.
By a false philosophy, well, you were God.
इस झूठे दर्शन के द्वारा कि आप स्वयं भगवान हो.
Just like if you told an atheist says, I don't believe in God.
अगर आप किसी नास्तिक को बोलते हैं या नास्तिक बोलता है मैं भगवान को नहीं मानता,
and you say, but my dear sir, if I told you that you were God, do you think you might be accepting God?
तो अगर आप उनको बोलते हैं कि महाशय अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप ही भगवान हैं, तो क्या आप नहीं मानेंगे कि भगवान नहीं होता है?
Well, if I can be God, I think I can believe in God. Yeah, that's all right.
तो नास्तिक कहेगा यदि मैं भगवान मान सकता हूँ तो हाँ ठीक है मैं भगवान मैं मानने को तैयार हूँ कि भगवान होता है.
So this is what Mayavadi philosophy is, the way to bring an atheist to the idea of accepting God.
तो ये मायावादी दर्शन का यही फायदा है कि लोग नास्तिक होने के बजाय भगवान में आस्था रखने लग जाते हैं.
But actually it's the same thing as atheism. That's all. It's covered, it's covered atheism.
लेकिन अंततः ये ढका हुआ नास्तिकवाद ही है.
And it's still going on very strongly in India.
और ये भारत में काफी तेजी से इसका प्रचलन हो रहा है अभी भी.
I remember when I was a young spiritual seeker in the US, one Swami from India, he came, Swami Satchidananda, and he said, all the students gathered and he said, I'm God, you're God, and we're all God.
तो मुझे याद है जब मैं तरुण अवस्था में आध्यात्मिकता की खोज कर रहा था अमेरिका में, तो एक सच्चिदानंद स्वामी नाम के एक व्यक्ति आए और उन्होंने बोला कि मैं भगवान हूँ, आप भगवान हो, हम सब यहाँ भगवान हैं.
So when you say Hindu philosophy this is what people think Hindu philosophy is, the idea that you're God.
तो इसीलिए लोग हिंदू दर्शन का मतलब यही समझते हैं कि हम सभी भगवान हैं.
But the real meaning of Hindu culture is Vaishnav culture, actually.
लेकिन वस्तुतः हिंदू दर्शन का सही मतलब है वैष्णव दर्शन.
So our Krishna consciousness movement is actually meant to defeat Mayavadi philosophy.
तो हमारे जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है ये मायावाद दर्शन का विरोध करने के लिए और उनको पराजित करने के लिए है.
And to re-establish that yes, there is God.
और ये पुनर्स्थापित करने के लिए कि हाँ भगवान हैं.
He is the supreme personality of Godhead.
और वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं.
And we are his eternal servants.
और हम उनके नित्य दास हैं.
Not that we are God.
ना कि हम भगवान हैं.
Although qualitatively we are one with him.
गुण की दृष्टि से हम उनके गुण की दृष्टि से हम उनके समान ही हैं.
In other words, we possess the same qualities of God.
हमारे अंदर भी वही गुण हैं जो भगवान के अंदर हैं.
God is eternal, we are eternal.
भगवान शाश्वत हैं, हम भी शाश्वत हैं.
God is full of knowledge, we are full of knowledge.
भगवान संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण हैं, हम भी संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण हैं.
We are full of bliss.
भगवान आनंदमय हैं, हम भी आनंदमय हैं.
But we are a little tiny drop and God is the big ocean.
हम एक छोटी बूंद की तरह हैं, परंतु भगवान एक महान सागर की तरह हैं.
If I bring you a drop of water from the Indian Ocean and I say this is Indian Ocean. If I bring a drop of Indian Ocean water and I say to you this is Indian Ocean.
अगर मैं भारतीय महासागर की एक बूंद लेके आऊं और कहूं कि ये भारतीय महासागर है.
I don't know how it translates into Hindi, but in English if I say this is Indian Ocean, that's correct. It's a sample of the Indian Ocean.
तो अगर ये बोला जाए कि ये भारतीय महासागर है तो ये ठीक है, लेकिन ये एक भारतीय महासागर का सैंपल मात्र है.
If I say this is the Indian Ocean, then that means it's the entire Indian Ocean. That's not true.
तो अगर ये बोला जाए कि ये भारतीय महासागर ही है तो ये गलत होगा.
So we are samples of God.
तो हम भगवान के सैंपल सैंपल समझते हैं आप लोग. भगवान एक हम सैंपल भगवान है.
In other words, it's true that you are Krishna.
ये सत्य बात है कि हम भगवान कृष्ण के हैं.
You are a little tiny drop of Krishna.
हम भगवान श्री कृष्ण के एक छोटे अणु हैं.
But you are not the complete whole Krishna.
लेकिन हम संपूर्ण रूप से भगवान नहीं हैं.
Krishna Govardhan Vrindavan Krishna, he is the emanator Krishna and we are the emanated Krishna.
तो स्वयं रूप भगवान श्री कृष्ण जो वृंदावन कृष्ण बोलते हैं उनसे ही सारे विस्तारित कृष्ण हम आते हैं. वो विस्तारी कृष्ण हैं और हम सभी विस्तारित कृष्ण हैं.
We are nothing but energy, Krishna's energy.
हम और कुछ नहीं है भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के अलावा.
एक कोपसौर्यथम जगानंद को थिम यक्तिरस्ति जगानंद चयरंत अंदंतरस्त परमानु चयंतरस्तम गोविंदम अधिपुरुषम तमहम भजामि. He is an undifferentiated entity.
वो अद्वय व्यक्ति हैं.
as there is no distinction between potency and the possessor thereof,
जिस प्रकार से शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है,
in his work of creation of millions of worlds, in his work of creation of millions of worlds, in Krishna's activity of creating millions of worlds,
भगवान जब बहुत सारी सृष्टि करते हैं,
his potency remains inseparable.
Okay. उनकी शक्ति का कभी ह्रास नहीं होता.
All the universes exist in him.
सारी जो जितने भी भौतिक जगत हैं, भौतिक ब्रह्मांड हैं, वो उनके अंदर ही रहते हैं.
And he is present in his fullness.
और वो संपूर्ण रूप से सदैव व्याप्त हैं.
In every one of the atoms.
हर एक कण में, हर एक अणु में.
That is scattered throughout the universes at one and the same time.
जो हर ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त हैं, हर अणु जो हर पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उस कण कण में भगवान हैं.
Not easy. That's Bhakti Siddhanta Saraswati. It's not easy to translate him. Such is the primeval Lord whom I adore.
तो यही आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण हैं.
So we have to understand who is Krishna, who am I, what is the relationship.
हमें समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण कौन हैं और उनसे मेरा क्या संबंध है.
We can learn how to harmonize with Krishna.
हम भगवान से अपना तादम्य स्थापित कर सकते हैं.
If we can learn how to synchronize with Krishna.
अगर हमने अपना तादम्य स्थापित करना सीख लिया भगवान श्री कृष्ण से,
then we can become one in happiness. We can experience the same happiness that Krishna experiences.
तो हम भगवान का वही आनंद अनुभव कर सकते हैं जो भगवान स्वयं अनुभव करते हैं.
The servant enjoys equally with the master.
जो सेवक है वो भगवान के स्वामी के बराबर ही आनंद उठाता है.
Unless he is envious.
बशर्ते वो ईर्ष्यालु ना हो स्वामी से.
The envious servant, he wants to take over the position of the master.
जो ईर्ष्यालु सेवक है वो स्वामी का पद प्राप्त करना चाहता है.
But the supreme master is very intelligent.
लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ स्वामी है वो बहुत बुद्धिमान है.
Those who are envious are immediately relegated to this material existence.
जो लोग ईर्ष्यालु हैं वो इस भौतिक जगत में भेज दिए जाते हैं.
No envious person can exist in the spiritual sky.
आध्यात्मिक जगत में ईर्ष्यालु व्यक्ति नहीं रह सकता.
As soon as you are envious, you are already here in the material world. As soon as you are envious, you already are here in the material world.
जैसे ही हम ईर्ष्यालु होते हैं तुरंत ही हम इस भौतिक जगत में आ जाते हैं.
So we are suffering at the present moment due to our envy of God.
तो हम दुख में हैं क्योंकि हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं.
So all we have to do to re-enter the wonderful pastimes of Krishna.
इसलिए भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करने के लिए हमें बस केवल इतना ही करना है.
To give up our envy.
कि हम भगवान से अपनी ईर्ष्या को त्याग दें.
My dear Lord, from now on, I'm going to serve you with love. That's all.
हे भगवान, आज से मैं आपका नित्य दास हूँ.
Whatever you want me to do,
आप जो भी मुझसे कराना चाहते हैं,
just tell me and I'll do it.
आप मुझे बताइए और मैं करने के लिए तैयार हूँ.
How do you want me to think? I'll think the way you want me to think.
मैं वैसे ही सोचना चाहता हूँ जैसे आप चाहते हैं कि मैं सोचूं.
How do you want me to speak? I'll speak the way you want me to speak.
आप कैसे चाहते हैं मैं कैसे बोलूं? मैं वैसे ही बोलना चाहता हूँ.
How do you want me to act? I will act exactly how you want me to act in all time, places and circumstances.
आप कैसे चाहते हैं कि मैं कैसे कार्य करूं? मैं वैसे ही कार्य करना चाहता हूँ हर देश, हर काल और हर समय में.
I'm the puppet.
मैं तो एक पुतली, कठपुतली हूँ.
You, my lord, are the puppeteer.
आप उस कठपुतली के संचालक हैं.
You simply pull my strings.
आप केवल उन धागों को खींचिए.
And make me dance, make me dance, make me dance as you like.
और मुझको नचाइए अपनी इच्छा के अनुसार.
But I have let you in an insider secret.
लेकिन मैं आपको एक अंतरंग रहस्य बताता हूँ.
As soon as you take this mood,
जैसे ही आप इस भाव को अंगीकार करते हैं,
of being completely a puppet in the hands of Krishna,
भगवान श्री कृष्ण के कठपुतली के रूप में अपने आप को मानते हैं,
Krishna will reciprocate with you.
भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही आपसे,
and he'll let you pull the strings and he will be the puppet.
भगवान श्री कृष्ण आपके आप रेसिप्रोकेट करेंगे आपके इस भाव से और वो कठपुतली बन जाएंगे और आपको धागे खींचने के लिए कहेंगे.
Just like Mother Yashoda.
जैसे हम देखते हैं माँ यशोदा के
chasing that naughty boy Damodar.
तो अपने शैतान बच्चे दामोदर के पीछे भाग रही हैं.
Binding him with rope.
और उसको बांध देती हैं.
Krishna will agree to be bound up by your love.
भगवान श्री कृष्ण हमारे प्रेम से बंधने के लिए तैयार हैं।
He will agree to be under your control, under your direction.
वो हमारे नियंत्रण में आने के लिए तैयार हैं।
But you can't be envious.
लेकिन हम ईर्ष्यालु नहीं हो सकते उनसे।
You have to be non-envious.
हमें उनसे उनके प्रति जो ईर्ष्या है वो त्यागनी पड़ेगी।
That's the secret.
यही रहस्य है।
So by the mercy of Prabhupada,
श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से,
we are getting this method, this technique.
हमको ये तरीका मिल रहा है।
Known as साधना भक्ति,
साधना भक्ति कहते हैं।
How to cure ourselves of this vicious disease known as envy.
जिसके द्वारा हम एक महान भयंकर बीमारी ईर्ष्या को अपने हृदय से निकाल सकते हैं।
And how to regain our original position in the spiritual
हम अपने वास्तविक स्वरूप को कैसे प्राप्त करेंगे?
If we read Prabhupada's books,
प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ करके,
we follow what's in Prabhupada's books,
उन शिक्षाओं को अपने जीवन में अनुपालन करके,
we don't add any sense gratification to this process, we just keep it pure.
तो इस पूरे तरीके में साधना भक्ति में हम अपने इंद्रिय तृप्ति को कुछ भी नहीं जोड़ने वाले।
And we will say it's the sweetest nectar.
और अंततः हमको भगवान का भक्ति का सुख मिलेगा।
So I can ask now if there are any questions.
पूछना चाहूंगा अगर किसी को कोई प्रश्न है।
Here comes a question. Written questions are very handy, but written in English. Is there a question on paper? That's good. Is it in English or Hindi? Let's see. In English, you can hand it to me.
Just Hindi. Hindi, please.
Hindi, okay.
So, ये प्रश्न है क्या मायावाद या नास्तिकवाद मिटाने के लिए धर्म का
निगल अडवांबर की जरूरत है? क्या है मायावाद?
Can you read what is there?
Okay, here's the first question. Even after coming in spirituality, Krishna consciousness movement, we have the tendency of thinking that I'm the creator.
कृष्ण भावना में आने के बाद भी हमारे अंदर में ये वृत्ति हो सकती है ये सोचने की कि मैं ही सृष्टि करता हूँ।
We do some service and think, oh, I'm doing it so well.
हम कोई सेवा करते हैं और हम सोचते हैं कि ओह मैं सेवा कितने अच्छे से कर रहा हूँ।
Sometimes we get into the mood of thinking that everything is manifesting due to my efforts.
तो हम कभी कभी सोचते हैं कि सब कुछ क्रियान्वित हो रही है मेरे प्रयासों के द्वारा।
How to get out of this disease?
इस प्रकार की मानसिक बीमारी से हम कैसे बाहर आएं?
That's very simple.
ये बहुत आसान है।
All you have to do is remember Srila Prabhupada.
आपको केवल श्रील प्रभुपाद जी का स्मरण करना है।
What amazing thing Prabhupada has accomplished by making spreading his movement all over the world.
श्रील प्रभुपाद जी ने कितना महान कार्य किया है इस मूवमेंट को इस कृष्ण भावामृत के आंदोलन को पूरे जगत में प्रचार करके।
Prabhupada said, I have absolutely no credit in this.
प्रभुपाद जी कहते थे कि इसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं है।
It is all due to the mercy of my spiritual master, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur.
ये सब कुछ मेरे गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की कृपा से हुआ है।
But if I have any credit at all,
यदि इसमें मेरा कोई योगदान है,
it is simply that I have done whatever my spiritual master told me to do.
तो इसमें यह है कि मैंने वही किया जो मेरे गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने मुझे करने के लिए कहा।
So a devotee, no matter what, if a devotee is properly situated in Krishna consciousness,
अगर भक्त ठीक से कृष्ण भावना में स्थित है,
whatever he may accomplish, he doesn't take any credit. He gives all credit to his spiritual master.
तो जो कुछ भी वो सफलता अर्जित करता है वो सभी कुछ अपने गुरु को अर्पित कर देता है।
And he says, if I have any credit at all,
तो वो कहता है कि अगर मेरा कुछ है इसमें योगदान,
it is my obedience to the orders of my spiritual master. That's the only credit that I can have.
तो वो ये है कि मैंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया है.
The second question is how to overcome enviousness of Vaishnavas.
तो दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान के भक्तों से वैष्णवों से ईर्ष्या को कैसे जीता जाए.
Actually, Prabhupada told me that Prabhupada told me about transcendental envy. He wrote me a letter and told me about transcendental envy of devotees.
Srila Prabhupada ji ne mujhe divya irsha ke bare mein bataya tha ek patra mein.
He said, if you see that some devotee is pleasing Krishna more than you,
अगर आप उन्हें बोला कि यदि आप देखते हैं कि एक भक्त आपसे ज्यादा कृष्ण को प्रसन्न कर रहा है,
then you should try harder so that Krishna will notice you also.
तो आपको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि कृष्ण आपको भी देखें.
So that's called transcendental envy.
तो उसे दिव्य ईर्ष्या कहते हैं.
So, Hare Krishna, in background of mind, I always think the Mangal Arti is meant to wake up Krishna Balaram. It keeps on going. This person is always thinking Mangal Arti is going on 24 hours a day. Vivava Rishesha Aloka Pravesha. They're always thinking it's going on. In their mind they think it's going on 24 hours a day.
तो एक भक्त हैं जो सोचते हैं कि विभाव रिशेष उनके मन में लगातार चलता रहता है 24 घंटे.
See, they want to know, this is an offensive to think the Mangal Arti is going on 24 hours a day.
तो पूछ रहे हैं क्या ये अपराधिक भावना है कि मंगल आरती उनके चित्त में लगातार चलता रहता है.
Actually, it's not at all offensive.
तो ये वास्तव कोई अपराध नहीं है.
It's very wonderful if you're thinking, oh, Mangal Arti, Vibhava Rishesha, Aloka Pravesha, Nindrachari Uttajiva. If that's all going on in your heart, that's wonderful, Prabhu. So wonderful.
प्रभु जी बोल रहे हैं अगर ये आपके संस्कार मंगल आरती के पूरे 24 घंटे आपके चित्त में चलते रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है.
So, if the Mayavadis follow Shankaracharya fully, will they not get liberation?
अगर मायावादी शंकराचार्य को बिल्कुल ठीक से उनका अनुपालन करेंगे तो क्या वो मुक्त हो जाएंगे?
Actually, if the Mayavadis will fully follow Shankaracharya, they will get liberated.
अगर मायावादी ठीक ठीक शंकराचार्य जी का पालन करेंगे तो सत्य में वो मुक्त हो जाएंगे.
Because Shankaracharya renounced Mayavadi philosophy.
क्योंकि शंकराचार्य जी ने मायावादी दर्शन को त्याग दिया था.
He said, "Bajjagovindam, Bajjagovindam, Bajjagovindam, Mudhamate, my dear rascal disciples, now you should worship Govinda."
तो उन्होंने बोला था अंत में कि हे मेरे मूर्ख शिष्यों, कृपया आप मायावादी दर्शन को त्याग दीजिए और भगवान गोविंद का भजन कीजिए.
But they didn't want to.
लेकिन वो भगवान का भजन नहीं करना चाहते थे.
They were too intoxicated by the idea that I am God.
क्योंकि वो इस दर्शन से इस विचार से कि मैं भगवान बन सकता हूँ पूरी तरह से उन्मत्त थे.
What is the scope for Mayavadis? Should we preach to them?
क्या मायावादियों को हमें प्रचार करना चाहिए?
Or should we not preach to them?
और यह हमें नहीं प्रचार करना चाहिए?
Actually, it reminds me of the old days at 26 Second Avenue.
26 Second Avenue के पुराने दिनों का मुझे स्मरण होता है.
Prabhupada was always talking against Swamiji, was always talking about criticizing the Mayavadis.
Prabhupada ji hamesha Mayavadi darshan ka khandan karte the.
The boys, they think, oh, who is these? The Mayavadis? This is some rival sect of Hinduism. What is this, the Mayavadis? They didn't know about it.
To wahan ke jo ladke ladkiyan the, wo sochte the, ye Mayavadi kaun hai? Ye lagta hai Hindu dharm ka koi dusra ek bhag hai.
But finally they realized, actually, we are the Mayavadis.
तो उन्होंने बाद में समझे कि अरे वस्तुतः हम ही लोग मायावादी हैं.
And it's a fact.
अरे सत्य है.
I don't know about you in India, but in America back in the 60s, all the hippies were Mayavadis.
मुझे आपके बारे में नहीं पता, लेकिन सन 60 के समय में अमेरिका में जितने भी हिप्पी थे वो मायावादी थे.
In fact, the first time I went to the temple in San Francisco, I walked in the Hare Krishna temple.
तो वस्तुतः मैं पहली बार जब सैन फ्रांसिस्को के मंदिर में हरे कृष्णा मंदिर में गया था.
एंड आई वाज चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे.
और मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा था.
एंड वन ब्रह्मचारिणी शी केम अप टू मी. आई वाज अ लॉन्ग हेयर्ड हिप्पी एट द टाइम म्यूजिशियन. शी केम अप एंड शी सेड, ओह, यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा सो नाइसली.
तो एक ब्रह्मचारिणी मेरे पास आई और उन्हें बोला, ओ तुम हरे कृष्ण महामंत्र बहुत अच्छे से बोल रहे हो.
And I was thinking, ha ha ha, if she only knew that I am Krishna.
और मैं सोच रहा था कि इनको ये पता नहीं, अगर इनको ये पता चल जाए कि मैं ही कृष्ण हूँ.
So we were Prabhupada was preaching the Mayavadis. We were all the hippies were all practically Mayavadis.
तो प्रभुपाद जी हम सबको प्रचार कर रहे थे और हम सभी प्राय मायावादी थे.
That's all we knew because we'd read all these books on Indian philosophy and it was all Mayavadi books.
तो ये स्वाभाविक था क्योंकि हम जिन भी पुस्तकों को पढ़ रहे थे उसमें मायावाद दर्शन ही था.
I grew up as a Christian, but it was so dry, you see.
मैं क्रिश्चियन के रूप में मेरा जन्म हुआ था और मेरा पालन पोषण हुआ था.
And I learned that through meditation you could become self-realized. Then I learned that through meditation you could become self-realized.
तो मैंने सीखा कि meditation
you could realize that you're God.
के द्वारा हम सब आपको ये साक्षात्कार हो जाएगा कि आप भगवान हैं.
So Prabhupada actually, so the thing is we're all infected with Mayavadi philosophy. That's the point.
तो सत्य तो ये है कि हम सभी मायावादी की बीमारी, मायावाद की बीमारी से प्रभावित हैं.
Therefore nirvishesha shunyavadi paschatya deshatarine.
इसलिए प्रभुपाद जी की प्रणति में ये श्लोक आता है.
Mayavadi philosophy is coming from India and it's infiltrated the West also.
मायावाद फिलोसफी जो है, दर्शन जो है, वो भारत से आ रहा है और पाश्चात्य जगत को भी प्रभावित कर रहा है.
We're all Mayavadi.
स्वाभाविक रूप से हम सभी मायावादी हैं.
So we can't preach to Mayavadis, we can't preach to anyone.
अगर हम मायावादियों को प्रचार नहीं कर सकते तो हम फिर किसी को प्रचार नहीं कर सकते.
We're all infected with this idea that we're God, you see?
हम सभी बीमारी से ग्रस्त हैं कि हम भगवान हैं.
That's why we took birth here. You may say, Prabhu, I don't believe that, but why did you take birth here in the material world to begin with? Because you were thinking that you were God.
तो आप ऐसा कहेंगे, मैं तो ऐसा नहीं सोचता, लेकिन हमें आप समझिए कि भौतिक जगत में हमने जन्म लिया है इसी भावना के कारण कि मैं भगवान हूँ.
We are all contaminated with Mayavadi philosophy.
हम सभी मायावादी दर्शन से प्रभावित हैं.
So we have to make turn these Mayavadis into Vaishnavas.
तो हमको इन मायावादियों को वैष्णव में परिवर्तित करने का प्रयास करना चाहिए.
How can we do that?
कैसे करेंगे?
It's not difficult.
बहुत मुश्किल नहीं है.
If we can just stop being Mayavadis ourselves and become actual Vaishnavas, we can attract the whole world of Vaishnava culture.
तो यदि हम स्वयं मायावादी न होकर के सच्चे वैष्णव बनने का प्रयास करें तो पूरे जगत को आकृष्ट कर सकते हैं कृष्ण भावना की ओर.
Okay, let's see here. Is Dharma the same as Yamaraj? Sometimes. That name is, he's called Dharmaraj.
क्या धर्मराज और यमराज एक ही व्यक्ति हैं? तो हाँ, ये सही बात है, धर्मराज को ही यमराज बोला जाता है.
Even after practicing Krishna consciousness, I have something. I'm still envious. What can be done?
Krishna bhavana ka anushilan karne ke bawajood main irsha se grast hu, to kya karna chahiye?
Well, it's natural that we until we become completely paramahamsas, which means non-envious. Completely non-envious devotees, we're going to have some envy. It's a fact.
तो ये सत्य है कि जब तक हम पूर्ण रूप से परमहंस स्तर पर नहीं पहुंच जाते तब तक कुछ न कुछ ईर्ष्या हमारे हृदय में रहेगी.
You have to take the medicine to get free from the envy.
इसलिए हमको ये दवा लेनी पड़ेगी कृष्ण भावना की, और जिसके द्वारा हम ईर्ष्या से मुक्त हो जाएंगे.
When you get sick, the doctor gives you a diet and he puts you on some medicine, isn't it?
जब हम बीमार पड़ते हैं तो जो डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, वो हमको पथ्य का पालन करने के लिए कहते हैं और दवा लेने के लिए कहते हैं.
So we are suffering from the disease called envy.
तो हम एक ईर्ष्या रूपी बीमारी से ग्रस्त हैं.
So our doctor Srila Prabhupada,
हमारे वैद्य श्रीला प्रभुपाद,
he has given us medicine.
ने हमको ये दवा दी है.
हरे कृष्णा 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरि. एंड ही हैज गिवन अस अ डायट.
और उन्होंने हमको ये पथ भी दिया है हरे कृष्ण महामंत्र के साथ में.
कृष्ण प्रसाद. सो इफ यू विल एंगेज योर टंग इन चैंटिंग हरे कृष्णा एंड टेकिंग प्रसाद एंड दिस एंड यू डू इट स्टेडली.
यदि आप भगवान का नाम लेते हैं और कृष्ण प्रसाद को ग्रहण करते हैं स्थिरता के साथ में,
all the envy will go away.
धीरे धीरे सारी आपकी ईर्ष्या चली जाएगी.
And you will become the pure devotee of Krishna.
और आप काल के समय बाद आप पूर्ण भक्त बन जाएंगे.
You become paramahamsa.
हम परमहंस वैष्णव बन जाएंगे.
यू विल रीगेन योर स्वरूपा इन कृष्णस पास्टाइम्स.
हम अपने स्वरूप को वापस प्राप्त कर लेंगे कृष्ण की लीलाओं में.
सो विल स्टॉप हियर. वी थैंक यू ऑल वेरी मच.
हम यहाँ कथा को रोकते हैं. हम सभी का धन्यवाद करते हैं.
गंतराज श्रीमद भागवताम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय.